एक वायरस ने सभी को देखभाल करना सिखाया। भोलू और शीनू ने कोरोना महामारी के दौरान कलंक व भेदभाव को जाना। ये कहानी है भोलू और शीनू की। भोलू और शीनू दोनों खुशीनगर में रहने वाले अच्छे दोस्त हैं। वे एक ही स्कूल में जाते हैं, अपने खिलौने और किताबें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और अपने घर के पास एक पार्क में साथ साथ खेलते हैं। एक दिन अचानक यह सब बदल गया। उनके परिवार वाले एक कोरोना वायरस और उससे होने वाली बीमारी के बारे में बात करने लगे। हर कोई चिंतित दिखने लगा। भोलू और शीनू को पूरे दिन अपने घरों के अंदर रहने को कहा गया। कोरोना वायरस की वजह से उनका स्कूल भी बंद हो गया और पार्क में खेलना भी। एक शाम जब भोलू घर के अंदर खेलते खेलते थक गया तो वह छत पर जाकर पेड़ों की शाखाओं पर खेलते हुए पक्षियों और गिलहरियों को देखने लगा। वह पार्क की ओर देखा जो एकदम खाली था। वह इसे देख अपने साथियों को याद करने लगा। वह कामना करने लगा कि वह फिर से शीनू के साथ खेल सके। जब घर से निकलना बंद हो गया तो भोलू और शीनू दोनों ही खेलने के लिए शाम के समय अपनी अपनी छतों पर जाने लगे। दोनों एक दूसरे को देखकर हाथ हिलाते थे, फिर अपने अपने खेल में लग जाते थे। लेकिन इधर कई दिनों से शीनू छत पर दिखाई नहीं दे रही थी। भोलू को उसकी चिंता भी हो रही थी। फिर कई दिनों के बाद उस दिन शीनू छत पर दिखाई दी। वह नीचे मुंह करके चुपचाप बैठी हुई थी। भोलू ने देखा कि वह बहुत देर तक वैसे ही बैठी रही। भोलू ने उसे आवाज दी तो भी उसने भोलू की ओर नहीं देखा। कई बार आवाज देने के बाद शीनू ने उसकी ओर देखा। वह बहुत उदास लग रही थी। भोलू ने उसकी ओर देखा, हाथ हिलाया, तब भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वह अपनी छत से नीचे चली गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शीनू तो हमेशा बहुत खुश रहती थी। भोलू ने यह बात अपनी प्यारी चाची को बताई। चाची को भी चिंता हुई। उन्होंने तुरंत शीनू के घर फोन मिलाया। शीनू के घर से जो बात पता चली उससे भोलू बहुत दुखी हो गया और चाची कुछ सोचने लगी। बात असल में पास वाले मोहल्ले की थी, जहां शीनू के मामा जी रहते थे। खबर अच्छी नहीं थी। शीनू के मामा जी को कोरोना हो गया था। कुछ दिन तक तो मामा जी को पता भी नहीं चला। उन्होंने जरूर किसी दूषित सतह को छुआ होगा जिससे कोरोना वायरस उनके शरीर में घुस गया। ये दूषित बूंदे या तो सांस लेने से नाक और मुंह के रास्ते या फिर हाथों से चेहरे को छूने की वजह से शरीर में घुसा होगा। यह तो हम जानते ही हैं कि वायरस शरीर में घुसने के बाद तुरंत असर दिखाना शुरू नहीं करता। वह चुपचाप अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। जब उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है तब वह शरीर पर हमला कर देता है। तब हमें उसके लक्षण यानी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। खांसी आती है, बुखार आता है और किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत भी होती है। तो कुछ दिनों के बाद मामा जी को खांसी और बुखार आने लगा। मामा जी ने तुरंत अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, यानी घर के दूसरे सदस्यों से दूरी रखते हुए अलग कमरे में रहने लगे। अपने कमरे में ही खाना खाने लगे और अपने बर्तन भी खुद ही धोने लगे। फिर जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनकी जांच भी हुई। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि मामा जी को कोरोना है। उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। घर के अन्य लोगों और उनसे मिले सभी लोगों को तुरंत क्वारंटाइन करा दिया गया। इसका मतलब यह था कि वे किसी भी चीज के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। उन्हें अपने घरों में ही रहना था, किसी से नहीं मिलना था और इस दौरान किसी को अपने घर के अंदर नहीं आने देना था। उनकी क्वारंटाइन से पहले और क्वारंटाइन का समय पूरा होने के बाद सबकी जाँच हुई। अच्छी बात तो यह थी कि घर का और कोई सदस्य कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ था। सब लोग ठीक ठाक थे। शीनू के मामा भी इलाज के बाद ठीक हो गए और वे अस्पताल से घर वापस आ गए। लेकिन अपने घर वापस पहुंचने के बाद मामा जी और घर के लोगों ने देखा कि लोग उनके पास आने से बच रहे हैं। पड़ोस के मकान वाले लोग उन्हें देखते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। फिर उन्हें पता चला कि मोहल्ले में कुछ लोग आपस में यह बात कर रहे हैं कि इन लोगों की वजह से ही कोरोना मोहल्ले में आया है। अभी उस दिन मामा जी पास की दुकान से कुछ सामान लेने गए तो दुकानदार ने उन्हें अपनी दुकान पर आने से मना कर दिया, जो उन्हें कई सालों से जानता था। इन सब बातों से घर के सब लोग बड़े तनाव में आ गए। यह बात जब शीनू को मालूम हुई तो वह भी बहुत उदास हो गई। एक तो कोरोना होने से सब लोग पहले ही परेशान थे, ऊपर से मोहल्ले वालों के बर्ताव ने उन्हें और भी दुखी कर दिया था। यह सब बातें जानकर भोलू बहुत उदास हो गया। उसे मामा जी के मोहल्ले वालों पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर भोलू की चाची ने उसे समझाया कि असल में मोहल्ले वाले ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोरोना के बारे में सही जानकारी नहीं है। इससे भोलू के मन का गुस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन उसे चिंता तो थी ही। लेकिन चाची ने कहा कि मैं सब ठीक कर दूंगी। जब चाची ने ऐसा कहा तो भोलू की चिंता खत्म हो गई। उसे मालूम था कि उसकी चाची सब ठीक कर सकती है। वैसे तो भोलू की चाची एक जाने माने स्कूल की प्रिंसिपल थी, लेकिन वह समाज के बहुत सारे काम करती थी, इसलिए शहर में उनका बहुत सम्मान था। भोलू को इस बात पर बड़ा गर्व भी था कि शहर के तमाम लोग उसकी चाची को जानते हैं। अगले दिन सुबह सुबह चाची अपना मास्क पहनकर घर से निकली और शीनू के मामा जी के मोहल्ले में पहुंच गई। मोहल्ले के बहुत से लोग उन्हें जानते थे, वे भी उनके साथ आ गए। इसके बाद सभी लोग मामा जी के घर के पास पहुंचे और एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हुए मामा जी के पड़ोसियों से बातचीत शुरू कर दी। भोलू की चाची ने पड़ोसियों को बताया कि सबसे पहली बात तो यह है कि कोई अपनी मर्जी से कोरोना या किसी भी बीमारी का मरीज नहीं बनता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसे कोई बीमारी हो जाए। दूसरी बात यह है कि कोरोना वायरस किसी को भी अपना निशाना बना सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसके शरीर में कोरोना वायरस मौजूद है, वह वायरस दूसरे लोगों तक अनजाने में पहुंचा सकता है। छींक या खांसी की बूंदों के साथ वायरस शरीर से बाहर आता है। यह बूंदें जहां भी गिरती हैं, वायरस वहां पहुंच जाता है। फिर उस जगह पर अगर किसी दूसरे का हाथ लगता है तो वायरस उस दूसरे व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाता है। अब अगर उस दूसरे व्यक्ति ने अपना हाथ अपने मुंह, नाक या आंख पर लगाया तो वायरस उसके शरीर में पहुंच जाएगा। अस्पताल से छुट्टी देते समय कोरोना के मरीज की जांच करके ये पक्का कर लिया जाता है कि कोरोना वायरस उसके शरीर से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद उस व्यक्ति में और दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रहता। इसीलिए हमें इलाज के पूरा होने के बाद उनसे मिलने से डरना नहीं चाहिए। पड़ोसियों से कोई जवाब न आने पर भोलू की चाची ने उनसे यह भी कहा, इस तरह भेदभाव करने से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भेदभाव के डर से कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर भी लोग उन्हें छुपाने की कोशिश करेंगे। वे अपनी जांच और इलाज कराने के लिए आगे नहीं आएंगे, और अगर लोग जांच नहीं कराएंगे तो पता कैसे चलेगा कि उन्हें कोरोना है या नहीं। इस तरह तो अंदर अंदर कोरोना फैलता रहेगा। पड़ोसियों ने चाची की बात सुन सहमति से अपना सर हिलाया। भोलू की चाची ने उनसे आगे यह भी कहा कि हमारा मुकाबला कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से है। एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ दुनिया के सारे इंसान। सारे का मतलब सारे, हर देश के, हर रंग या नस्ल के, हर धर्म मजहब के, हर उम्र के सारे लोग। कोरोना से सबको खतरा है, तभी तो दुनिया के सब देश मिलकर कोरोना को हराने के तरीके खोज रहे हैं। चाची की बातें मोहल्ले वालों को जल्द ही समझ में आ गई। ये बातें जानकर मोहल्ले के लोगों को अपने ऊपर अफसोस हुआ। शीनू के मामा जी के पड़ोसी अंकल तो रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। जब भी हम मुसीबत में थे तो मामा और उनके परिवार ने हमेशा हमारी मदद की। अब जब उन्हें हमारे समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता है तो हमने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने मामा के परिवार की ओर देखा और कहा, हमें माफ कर दीजिए। मोहल्ले के दूसरे लोगों ने भी मामा जी से माफी मांगी। सब ने मिलकर भोलू की चाची को धन्यवाद भी दिया। घर लौटकर चाची ने भोलू को सारी बात बताई तो भोलू बहुत खुश हुआ। सब बात शीनू को भी पता चल गई थी। शीनू ने भोलू से कहा कि तुम्हारी चाची तो सुपरस्टार है। इससे भोलू और भी खुश हो गया। जब उसने यह बात चाची को बताई तो चाची मुस्कुराने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसी ही एक और बात हो गई। उस दिन भोलू के घर में सब लोग रात को खाना खाकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी। सभी चौंक गए। इतनी रात कौन उनके यहां आ सकता है? दरवाजा खोला तो देखा कि मास्क पहने हुए एक महिला वहां खड़ी हुई थी। जब उन्होंने मास्क उतारा तो सब चौंक गए। अरे, ये तो सिमरन आंटी थी। सिमरन आंटी चाची की पक्की सहेली थी। वह शहर के बड़े अस्पताल में एक नर्स थी। उनका घर दूसरे शहर में था और वह खुशीनगर में किराए पर घर लेकर रहती थी। जब उनसे पूछा गया कि वह इतनी देर रात तक बाहर क्या कर रही थी तो सिमरन आंटी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं रात में जब हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने कमरे पर पहुंची तो मकान मालिक ने घर में घुसने से मना कर दिया। एक किराएदार ने तो धमकी दी और मुझे दूर जाने के लिए कहा। मैंने उनसे विनती किया कि इतनी रात में कहां जाऊंगी, लेकिन मकान मालिक ने एक न सुनी, इसलिए मैं आपके घर आ गई। भोलू के परिवार वालों ने सिमरन आंटी को चिंता न करने के लिए कहा। चाची ने कहा कि वह अगले दिन उनके घर के मालिक से बात करेंगी। सिमरन आंटी रात को उनके साथ रही। सिमरन आंटी बहुत अच्छी थी। वह जब भी भोलू के घर आती उसके साथ शतरंज खेलती थी। असल में उन्होंने ही भोलू को शतरंज खेलना सिखाया था। जब भी सिमरन आंटी घर आती भोलू के लिए बहुत सी मिठाइयां लेकर आती थी। इस बार भोलू के जन्मदिन पर उन्होंने एक अच्छा सा गाना भी सुनाया था। सिमरन आंटी को परेशान देखकर भोलू को बहुत गुस्सा आया। उसने टीवी पर सुना था कि डॉक्टरों, नर्सों, स्वच्छता कार्यकर्ता, पुलिस और कोरोना से बचाने वाले हीरो को परेशान करने पर सजा भी हो सकती है। उसने कहा कि इस बात की पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन चाची ने कहा कि चिंता करने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन चाची, सिमरन आंटी और कुछ अन्य लोग अपने मास्क पहनकर सिमरन आंटी के मकान मालिक के पास पहुंच गए। आपस में दूरी बनाए रखते हुए सब बातचीत करने लगे। चाची ने पहले तो मकान मालिक को डांटा और फिर समझाया। भोलू की चाची ने उन्हें बताया कि सिमरन जैसे लोग अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, स्वच्छताकर्मी, पुलिस और वे सभी लोग जो कोरोना से लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं, उन्हें हम कोरोना वॉरियर यानी कोरोना योद्धा कह रहे हैं। उनका तो सब दिए जलाकर और ताली बजाकर सम्मान कर रहे हैं। मकान मालिक को तो खुश होना चाहिए कि एक कोरोना योद्धा उनके घर में रह रही हैं, लेकिन आपने उल्टा सिमरन को परेशान किया। क्या ये सही है? चाची ने उन्हें यह भी बताया कि क्या आपको पता भी है कि कोरोना से बचाने वाले हीरो को परेशान करने या उनके काम में रुकावट डालने वालों को कानूनन सजा भी हो सकती है। ये तो सिमरन ने पुलिस को फोन नहीं किया, वरना रात में ही पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाते। असल में वे सीधी सादी हैं, इसलिए ऐसा नहीं किया और चुपचाप देर रात मेरे घर आ गई। सारी बातें सुनकर मकान मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भोलू की चाची से माफी मांगने लगा। चाची ने कहा कि उन्हें इसके गलती के लिए सिमरन से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा करने पर सिमरन ने मकान मालिक से कहा कि ऐसा मत करिए, आप मुझसे बड़े हैं, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप समझ गए हैं कि आपने जो किया वह गलत था तो वही मेरे लिए काफी है। बाद में भोलू को यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हुआ। उसने चाची से कहा, चाची आप हमारी सुपरस्टार हैं, मैं भी बड़ा होकर आपकी ही तरह बनूंगा और सबकी सहायता करूंगा। यूनिसेफ इंडिया के साथ न्यू कॉन्सेप्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की साझेदारी द्वारा प्रस्तुत